राधा जीवन प्रभु जी कहते हैं कि ये उड़िया अक्षर सब जगन्नाथ जी जैसा लगता है। हम लोगों तो उस समय से मैं कोई अक्षर देखता हूँ तो सीधे जगन्नाथ जी सुभद्रा बोलते दिखाई देते, और कुछ पता नहीं चल रहा है। नमाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनाम् सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महान्। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महान्। प्रयतः सावधानी से चित्त को एकाग्र करके कीर्तयेत् कीर्तन करे कहे। प्रातः प्रातः समवाये समाज में द्विजन्मना द्विजों के भक्तों के सायं संध्या समय च और पूर्ण श्लोकस्य पवित्र कीर्ति वाले ध्रुवस्य ध्रुव महाराज का चरितं चरित महान महान अद्भुत। अनुवाद। मैत्रेय मुनि ने कहा मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यानपूर्वक ब्राह्मणों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का कीर्तन करे। तत्पर्च कहा जाता है कि केवल भक्तों की संगति में ही श्री भगवान या उनके भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों की महत्ता समझी जा सकती है। इस श्लोक में विशेष यह बात कही गई है कि ध्रुव महाराज के चरित्र की विवेचना द्विजों अर्थात योग्य ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों के समाज में की जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह उन ब्राह्मणों का समाज खोजे जो वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है, क्योंकि इसमें भक्तों तथा भगवान के चरित्र तथा लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। इस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ की व्यवस्था की गई है। इस संघ के प्रत्येक केंद्र में न केवल प्रातः सायं दोपहर में अपितु 24 घंटे भगवान की भक्ति चलती रहती है। जो भी इस संघ के संपर्क में आता है वह स्वमेव भक्त बन जाता है। हमारा यह अनुभव है कि अनेक कर्मी तथा अन्य जन इस संघ में आते हैं और इस्कान के मंदिरों में अत्यंत शांत तथा सुखद वातावरण पाते हैं। इस श्लोक में द्विजन्मनाम शब्द का अर्थ है दो बार जन्म लेने वालों का। कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनावृत संघ में सम्मिलित हो सकता है और द्विज होने के लिए दीक्षित हो सकता है। पहला जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु दूसरा जन्म आध्यात्मिक पिता तथा वैदिक ज्ञान से संभव होता है। जब तक मनुष्य द्विजन्मा नहीं होता, वह भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषता को नहीं समझ सकता। इसलिए शूद्रों के लिए वेद पाठ वर्जित। मात्र शैक्षिक योग्यता से शूद्र दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकता। इस समय सारे विश्व में जो शिक्षा पद्धति है उससे केवल शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं। बड़े से बड़ा प्रौद्योगिकी विद शूद्र से अधिक नहीं होता। कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं। चूंकि विश्व की पूरी जनसंख्या शूद्र है, अतः आध्यात्मिक ज्ञान का पतन हुआ है जिसे लोग दुखी हैं। श्रीकृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात योग्य ब्राह्मण उत्पन्न करने के उद्देश्य किया गया है, जो सारे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर सकें, जिससे लोग सुखी रह सकें। ध्रुव महाराज का चरित कहने के बाद श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं ध्रुव महाराज के चरित का वर्णन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। बहुत प्रशंसा की है। इस श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि द्विजन्मनम समवाय, द्विजन्मा द्विजों के समाज में, अर्थात जो सुसंस्कृत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके समाज में जो व्यक्ति प्रातः और सायं ध्रुव महाराज के चरित का कीर्तन करता है, कीर्तन करना चाहिए। कीर्त ये विधि लिंग है, कीर्तन कर ये आदेश जैसा कर रहे हैं। प्रातः सायं, जैसे हम लोग दो बार भागवत करते थे कटक में, वही है प्रातः सायं, प्रातः काल सायं। प्रातः इसलिए इसमें कहा गया है कि प्रातः काल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मन एकाग्र होता है, तो अवश्य भगवान की चर्चा सुननी चाहिए या ध्रुव महाराज जैसे भक्त की। और सायं और चकार से 24 घंटे जब फुर्सत मिले तब, जब भी च से चकार पर प्रातः और सायं और अथवा च का अर्थ है अनुक्त समुच्चय, जो और समय नहीं बताया गया है उन सबको ले रहा है च। तो प्रातः सायं चकारेण मध्यम दिने रात्रौ सब समय ध्रुव महाराज के चरित का कीर्तन करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। इसकी आवश्यकता है, इसको सुन करके लोग भक्त हो जाएंगे। ध्रुव महाराज का अद्भुत चरित्र, भगवान ने ध्रुव महाराज की इच्छा पूरी की। और ध्रुव महाराज के इस प्रसंग में जीवों के साथ भगवान का क्या संबंध है, यह बहुत अच्छी तरह से प्रस्फुटित हुआ है। ध्रुव महाराज को देखने के लिए भगवान आए मधुबन और वर दिए। ध्रुव महाराज कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि उनको ध्रुव लोक मिलेगा, लेकिन भगवान इतने उदार हैं कि उन्होंने अपने आप दिया। तो एक शब्द पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं कि द्विजों के समाज में ध्रुव महाराज का चरित्र कहना चाहिए। द्विजन्मनाम समवाय, समवाय का अर्थ है संघ, समाज, संगति। क्यों द्विजों के समाज में कहना चाहिए और लोगों के नहीं? क्योंकि और लोग समझेंगे ही नहीं। वो ध्रुव महाराज के चरित्र का को महत्व नहीं देंगे, वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए द्विजों के समाज में जिनका दो बार जन्म हुआ है, अर्थात जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उपनयन संस्कार है, दीक्षित हैं। दीक्षित का अर्थ जिन्हें ज्ञान है, श्री कृष्ण की महिमा जानते हैं और भक्तों की, उनको ही सुनाना चाहिए, उनके समाज में कीर्तन करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसके लिए हरे कृष्ण आंदोलन है, स्कान है, इसमें हम लोग बीज बनाते हैं। इसमें जो व्यक्ति आता है, भगवान को प्रणाम करता है, उसी समय द्विज हो जाता है। कहीं भी भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखता है, वह वास्तव में द्विज है, भगवान को समझा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारा विश्व शूद्रों से भर गया है, तो पहले तो द्विज बनाएंगे, तब न भक्ति कराएंगे। द्विजों के समाज में भागवत कहना है, तो द्विज बनाने के लिए, दो बार जन्म देने के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि जीवों को हरिनाम उच्चारण करने की शिक्षा दी जाए। जीवों से मेरा तात्पर्य मनुष्यों से है। मनुष्यों को भगवान का नाम बोलने की और भगवान को प्रणाम करने की कला सिखाई जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे पशु जन्म लेते हैं, वैसे मनुष्य भी जन्म लेता है। माता पिता से जन्म ले लेना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो जैसे तैसे जन्म हो ही जाता है, उसमें मनुष्य को प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन दूसरा जन्म लेने के लिए बहुत विधियां होती हैं, भगवान को समझना पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कोई ज्ञान नहीं रहता है, उसकी माँ कौन है, उसके पिताजी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो लोग बताते हैं, खास करके माँ सिखाती है, बताती है ये तुम्हारे पिता हैं। दूसरे लोग बताते हैं तुम्हारे पिता का ये नाम है, तुम्हारे पिता का ये नाम है, ये नाम है। और मान लीजिए वो जान गया, पढ़ लिख गया, मेरा घर यहाँ है, मेरे पिताजी यहाँ है, मेरा ये सब कुछ है, मेरा ये सब कुछ, तो यह तो पहला जन्म हुआ। लेकिन परम पिता कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इस विषय में कोई माता पिता नहीं सिखाते है ना। तो ध्रुव महाराज का जन्म हुआ था उत्तानपाद महाराज से और सुनीति के गर्भ से, लेकिन जब पिता ने गोद में नहीं बैठा और बच्चा रो रहा था, तो माँ सीधा कहती है कि बेटा तुम परम पुरुष भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। तत्त्वन्यतः पाद ऐसे पद्म पलाश लोचना दुखद छिदम न गण्यामि कश्चन। बेटा कमल नयन भगवान के अलावा तुम्हारे दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। तुमको राज्य चाहिए तो उनकी आराधना करो। सुनीति ने यह नहीं कहा कि जाओ अपने मामा को लाओ, पंचायत कराओ, क्यों नहीं राज्य देगा। या समाज में फिर पंचायत इकट्ठा करो, न्याय करवाओ, या कोर्ट में केस करो, ये करो, कुछ नहीं, सीधे विष्णु की शरण लो। यही है द्विज का लक्षण, जो भगवान को समझे और कुछ नियमों का पालन करें। हम लोगों के लिए सबसे आवश्यक ज्ञान यही है कि इस विश्व के रचयिता और विश्व के पालक श्री भगवान को, जगन्नाथ जी को हम समझें। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाए कृष्ण कैल वेद पुराण। और शास्त्र गुरु आत्मरूपे अपना रे जनान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीव है ज्ञान। जीवों को अपने आप ज्ञान नहीं है कि कौन इस जगत की उत्पत्ति किए हैं, कौन पालन कर रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने शास्त्र बनाए हैं, शास्त्र दिए, और शास्त्र पढ़ करके, श्रीमद् भागवत आदि पढ़ करके, सुन करके हम जीव को ज्ञान होता है। कृष्ण हमारे प्रभु हैं, कृष्ण हमारे प्राता हैं, कृष्ण हमारे बंधु हैं, सब कुछ हमारे स्वामी हैं। जीव को इसका ज्ञान होता है, तो खास करके शास्त्र, गुरु और अंतर्जामी परमात्मा द्वारा यह ज्ञान दिया जाता है। परंतु परमात्मा तब तक ज्ञान नहीं देते हैं जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं सुनता है या भगवान के भक्तों को समर्पण नहीं करता है, तब तक भगवान भी भीतर रहते हैं, बेकार रहते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं। और खाने पीने के लिए, घूमने के लिए ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन भक्ति का ज्ञान भगवान नहीं देते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, तब भगवान हृदय में अनंत ज्ञान की धारा प्रवाहित करने लगते हैं, देने लगते हैं। तो जब ज्ञान होता है वास्तविक, तब क्या स्थिति होती है? कृष्ण मोर प्रभु त्राता, यही भावना होती है। ये शुद्ध ज्ञान का लक्षण है। कृष्ण के प्रति ये भावना होती है, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, जगन्नाथ जी हमारे प्रभु हैं और हमारे रक्षक हैं, हमारे पालन पोषण करने वाले हैं और हमारे सबसे प्रिय आत्मीय बंधु हैं। इस प्रकार की भावना होती है। अन्यथा मनुष्यों को ऐसे न समझाया जाए, भगवान के गुणों का वर्णन न किया जाए, तो ये सोचते हैं कि हमको हम कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर भगवान है भी संसार में तो हमसे क्या उसका संबंध है, क्या मतलब है? इस पशु जैसे जी रहे हैं। वास्तव में भगवान के बनाए हुए सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, पृथ्वी का उत्पादन खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान के विषय में कोई खास प्रेम नहीं। उससे लाख गुना ज्यादा अपने परिवार से प्रेम है, अपने लोगों से, अपने देह से। एक बार एक व्यक्ति तो ऐसे तर्क किया कथा में, कहा कि मान लेते हैं भगवान जगत की सृष्टि किए हैं, पालन कर रहे हैं, तो इससे क्या, इससे क्या हमको क्या जरूरत है कि हम उनके चक्कर में रहें? तो मैं कहा क्या आपत्ति है अगर भगवान की याद करेंगे? तो वो कहता है अगर भगवान की याद करेंगे तो हमेशा भय लगा रहेगा कि कोई गलती ना हो जाए, वो दंड देगा, ये देगा, इसलिए आंख बंद करके ईश्वर को छोड़ दो और जो मन में आवे वो करो, ऐसा कह रहा है। मूर्खों का लक्षण है। भगवान को याद करने पर तो आदमी कोई काम धंधा नहीं कर पाएगा, हमेशा डर बना रहेगा, देख रहा है कदा। मैं कहा यही बात नहीं है, वास्तव में भगवान का स्मरण करने से जीव का दुख दूर होता है, वो प्रफुल्लित चित होता है। श्रीमद् भागवतम में अनेक उदाहरण हैं जिसमें दिखाया गया है कि लोग किस तरह श्री कृष्ण के प्रति भावना करते हैं। आपने सुना कटक में कंस क्या सोचता था? कंस की केवल यही भावना थी कि कृष्ण मोर शत्रु, कृष्ण मेरा दुश्मन है, शत्रु, यही भावना। हिरण्यकश्यपु की भावना थी कृष्ण मेरे परिवार पर पड़ा हुआ है, मेरे भाई की हत्या किया है, हमारा सबसे बड़ा अहित, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कृष्ण। कितनी विपरीत चेतना, इससे और भी कई तरह के हुए। कुछ उदासीन होते हैं और कुछ तो निंदक भी होते हैं, लेकिन आज के समाज में लोग उदासीनता को बहुत अच्छा दर्जा देते हैं। कोई कोई लोग कहते हैं मान लीजिए हम कमाई करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जी रहे हैं और भगवान का भजन नहीं करते हैं, हम ईमानदार हैं, तो इसमें क्या गलती है? हम लोग बताते हैं कि बिना भगवान के भजन के, बिना कृष्ण के भक्ति के कोई ईमानदार ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता है, बेईमान रहेगा। तो ईमान है ही नहीं। ईमान तो तब है जब हम न्याय देखें कि भाई भगवान ने हमारे लिए सब कुछ किया है तो हम भगवान को प्रणाम करें, भगवान की भक्ति करें, यही ईमान है। ये तो कोई बच्चा ऐसा कहे कि ठीक है माता पिता ने हमको जन्म दिया, पाल दिया, पोष दिया, लेकिन अब क्या जरूरत है उनसे, हम खाएंगे पिएंगे कमाएंगे कुछ भी करेंगे, तो ये तो महाबेईमान का लक्षण हुआ ना। बिना भगवान के भजन के सब आदमी चोर है, वो नेक हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कुछ चोर कहीं किसी के घर में चोरी करते हैं, कई सामान इकट्ठा करते हैं, तो जब सामान इकट्ठा हो जाता है तो वे चोर सब कहते हैं आपस में, भाई देखना ईमानदारी से बांटना, कोई इसमें बेईमानी न होने पाए, इसमें सदा सहायता से ईमानदारी से बांटना है, वितरण करना। बताइए उस चोरी के धन में से एक पैसा भी लेना ईमानदारी है? और मान लीजिए कुछ चोर ईमानदारी से धन बांट रहे हैं, अब तब तक पुलिस पहुंच जाए वहां, पुलिस घेर ले और तब तो बताएगी पुलिस ने कि क्या ईमानदारी है, वो डंडा से मार मार करके सब बेईमानी सिद्ध कर देगी। इसी तरह से हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, खा रहे हैं और सोचते हैं हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, ये बेईमानों का संघ बन गया है। उधर अमेरिका वाले कहते हैं ये भूमि मेरी है, यहां कोई नहीं आ सकता है, आएगा भी तो घूम करके चले जाना, वीसा जल्दी नहीं देते हैं। इतना लैंड है, इतनी भूमि है वहां ज्यादा, क्या कहा जाए। और भारत में या और देशों में लोग इतना कंजस्टेड दुखी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन वे लोग जाने नहीं देते, ईमानदारी से बांटे हैं किसी को, ईमानदार। तो इसी तरह से कहीं भी व्यक्ति ईश्वर की याद नहीं कर रहा है और भगवान के धन को खा रहा है, द्विज होना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए, भगवान हमारे प्रभु हैं, रक्षक हैं, नाथ, नाथ का अर्थ होता है पालक, रक्षक, जगन्नाथ जगताम जीवा नाम नाथ पालक। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि जगन्नाथ नाम क्यों कृष्ण को दिया जाता है, इतना अच्छा अच्छा नाम कृष्ण है, गोविंद है, ये नाम न देकर के जगन्नाथ क्यों दिया जाता है? कृष्ण का जगन्नाथ नाम इसीलिए है कि सभी जीव समझें इस रहस्य को कि भगवान हमारा पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। भगवान के इस गुण को व्यक्त करने के लिए ही उन्हें जगन्नाथ शब्द दिया जाता है। ये बहुत सुंदर भगवान का नाम है, सभी जीवों के नाथ हैं, पालक हैं, सबको सब चीज खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो कोई भी जीव है, विशेषकर मनुष्य, यह समझने का प्रयास करे कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। कुछ लोग भगवान को निराकार समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं हाँ एक शक्ति है, और कुछ लोग कहते हैं ठीक है भगवान का काम है जगत का पालन करना, खिलाना पिलाना है। ये कौन ज्यादा एहसान दिखा रहे हैं भगवान, उनका तो धर्म है, जब माता पिता हैं तो बच्चे को जन्म देना, कपड़ा देना, खिलाना उनका काम है, कौन नया काम कर रहे हैं। भगवान जन्म दिए हैं तो खिलाएंगे देंगे लेंगे, और ये पूछा जाए ठीक है भगवान का धर्म है, भगवान का कर्तव्य है कि जगत को जन्म दिए हैं तो खिलाएंगे पालन करेंगे, और जीवों का क्या कर्तव्य है? जीवों का कर्तव्य है कि जगन्नाथ जी को भूल करके केवल शराब पिए, क्रिकेट खेले, यही जीव का काम है? जरा बताइए। ठीक है जगन्नाथ जी तो अपना धर्म निभा रहे हैं, भाई जगत के ईश्वर हैं तो क्या करेंगे, उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा ही, कोई उनको निराकार कहे चाहे उनकी कोई निंदा करे फिर भी सबको पोषना उनको पड़ेगा ही, वो तो पोष ही रहे हैं। अब जो भगवान को निराकार कहते हैं उनके लिए ऐसा भगवान जगन्नाथ जी नहीं कहते हैं कि मेरा हवा मत लो, मेरी पृथ्वी पर मत रहो, सबको पाल रहे पोषते हैं। जो कुछ भी कहे वास्तव में भगवान को सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने कर्तव्य का, वो सदा तत्पर है, सदा निरस्त कुहकम, माया के प्रभाव से परे हैं भगवान, जो उन्हें करना है कर रहे हैं। हमें क्या करना है इसके लिए शास्त्र बनाया गया है, हमें करना है, बार बार शास्त्र सिखाता है, और खास करके कलयुग में जिनका जन्म हुआ है उनको शास्त्र कहता है, साधु कहते हैं कि बस 24 घंटे भगवान का नाम बोलते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ जी स्वयं गौर सुंदर बनकर आए और बताए कि अगर चित्त को शुद्ध करना है तो महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, इससे अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, तब हम भगवान को समझने में सक्षम हो जाते हैं, अन्यथा भगवान को समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए जब दीक्षा दी जाती है तो उस समय शिष्य यह दृढ़ संकल्प करता है कि आज से मैं जगन्नाथ जी का हो गया, कृष्ण का हो गया, और उसका जीवन चेंज हो जाता है, तो उस समय उसको द्विज कहा जाता है। तथा दीक्षा विधान है ना, द्विजत्वम जायते निर्णय, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भगवान को समझ जाता है, और कुछ विशिष्ट उत्तरदायित्व प्रारंभ होता है उसके जीवन में, जिसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है भगवान के नाम का जप करना, एक निश्चित संख्या, कम से कम निश्चित संख्या। तो श्रील प्रभुपाद जी जब दीक्षा देते थे तो कहते थे चांट एटलीस्ट 16 राउंड्स, 16 माला जॉब करो कम से, और वास्तव में दीक्षा में यही दिया जाता है, भगवान का नाम दिया जाता है, भगवान से संबंध बता करके। तो प्रतिदिन कथाएं चलती है मंदिरों में और भक्तों के सत्संग चलते हैं, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण हमारे हैं, तब हम उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो जोड़ने के लिए भगवान से हमारा जो संबंध है उसको सोशलाइज करने के लिए, समाजीकरण करने के लिए वैष्णव और गुरु की जरूरत होती है। वैष्णव जन भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं और सुविधा देते हैं, मंदिर बनाते हैं, मंदिर बना करके भगवान के श्री विग्रह को स्थापित करते हैं, पूजा पद्धति द्वारा सिखाते हैं, देखो ये तुम्हारे प्रभु हैं, तुम्हारे ईश्वर हैं, एक अवसर देते हैं। तो इस तरह से समस्त वैष्णव वृंद गुरु हैं, वो हमारा सहाय करते हैं कृष्ण को समझने में, पुस्तकें छापते हैं, पुस्तकें पढ़ करके हम लोग भगवान को समझते हैं, मंदिर में भगवान के श्री विग्रह को देख करके समझते हैं, कथाएं सुन करके समझते हैं, कीर्तन सुन करके समझते हैं, कई तरह से भगवान के भक्त अन्य जीवों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं कृष्ण को समझने में। तो उन्हीं सहायकों में से एक गुरु भी सहायक होता है, सहायक मीडियम है वास्तव में, गुरु कोई गोल नहीं है, मीडियम है, थ्रू वो भगवान को समझने में सहायता देता है। तो दीक्षा के समय वास्तव में गुरु के साथ संबंध नहीं होता है जीव का, कृष्ण के साथ संबंध होता है, कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः, कृष्ण के साथ संबंध कराया जाता है। जैसे आपने देखा है, हम सभी भारतवासी हैं तो देखते रहते हैं, विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर किसी कन्या को किसी वर से जोड़ा जाता है, पाणी ग्रहण कराया जाता है, संस्कार कराया जाता है, उस दिन से वह कन्या उस वर की हो जाती है। बीच में कोई पुरोहित यज्ञ करके और वैदिक मंत्र पढ़ करके कन्या को अर्पण करते हैं वर के लिए। गुरु और वैष्णव लोग पुरोहित स्थानीय हैं, वे लोग एक व्यवस्था करके अग्नि जला करके यज्ञ करके प्रवचन करके जैसे तैसे बहुत काल से तैयारी करके और भक्त को जगन्नाथ जी को अर्पित करते हैं। तो संबंध जगन्नाथ जी से होता है, पर आज के युग में बहुत भारी भ्रम लोगों के मन में जुटा हुआ है, आज हमारा गुरु से संबंध हुआ, गुरु से क्यों संबंध हुआ, संबंध वास्तव में कृष्ण से है जीव का सदा से और सदा रहेगा। उसी संबंध को केवल एक समाजीकरण करना है, सोशलाइज करना है, प्रकट करना है। अब यह कोई कहे, जैसे मान लीजिए विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर कोई कन्या को यह सिखावे कि तुम्हारा संबंध आज से इस ब्राह्मण से हो रहा है जिसने यज्ञ कराया है, यह कितनी गड़बड़ी होगी बताइए। और भगवान का वर्णन न किया जाए, मान लीजिए वर का वर्णन न करे कोई, दीक्षा दे और पहले तो ये प्रचार करे कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भजन करो, भजन करो, और जिस दिन नहीं वर का भजन करो, कन्या को मान लीजिए बताया जाए वर का भजन करो और कन्या बैठे यज्ञशाला में विवाह मंडप में और जो यज्ञ करा रहा है जो गुरु है वो कहे कि तुम्हारा वर तो निराकार है, उसको हाथ है न पैर है न नाक है न मुख है न कुछ, कुछ नहीं है, और आज से तुम मेरी हो गई, ऐसा कहते हैं उसे ब्राह्मण को जूतों से मारना चाहिए कि ये तो गुंडा बैठा है। कोई भी गुरु अगर यह कहता है कि भगवान निराकार है तो समझना चाहिए कि वो बहुत खल व्यक्ति है। तो नन वैष्णव तो गुरु हो ही नहीं सकते हैं, वो भगवान का कोई वर्णन ही नहीं करते हैं। और संबंध क्या कराते हैं आप विश्वास कीजिए, देखी हुई बात मैं कहता हूं, कुछ मंत्र देते हैं तो मंत्र देते हैं और उस अवसर पर उसके कुछ चेला खड़े रहते हैं और भगवान का कोई फोटो नहीं देते हैं, गुरु का फोटो रखे रहते हैं और वही देते हैं उसको, और चूंकि भगवान तो निराकार हैं तो भगवान के फोटो तो बनेंगे नहीं भगवान की क्या जरूरत है। तो ये तो खैर नन वैष्णवों की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन वैष्णवों में भी बहुत अज्ञान है भरा हुआ है, तथाकथित वैष्णवों में संबंध है भगवान से हो रहा है इस बात को समझना चाहिए, और भगवान से संबंध है कराया जाए या न कराया जाए वो तो नित्य संबंध है। जीव के तरफ से उसका साक्षात्कार करने की आवश्यकता है, उसको रियलाइज करने की आवश्यकता है, और दीक्षा तो उसी दिन प्रारंभ हो जाती है वास्तव में जिस दिन कोई भक्त किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को बताता है कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण प्रभु हैं, कृष्ण त्राता हैं, कृष्ण बंधु हैं, सब कुछ हैं, कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन कोई किसी को सिखाता है जप करने के लिए कहता है वास्तव में दीक्षा उसी दिन प्रारंभ होती है। ये कोई आग जला करके और नाम बदल देना कह देने दीक्षा हो, यही दीक्षा नहीं है। शास्त्र कहता है दीक्षा उसी दिन से उसकी चालू होती है, और पता नहीं कितने कितने भक्तों का उपकार उस व्यक्ति के पास है, किसी ने कृष्ण के बारे में कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, इस तरह से धीरे 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 वह कृष्ण से जुड़ जाता है, संयुक्त होता है और उसका जीवन धन्य होता है। वास्तव में जो दीक्षा की जाती है वह तो एक सर्टिफिकेट जैसा है कि कृष्ण के साथ तुम्हारा संबंध हो गया, नहीं तो वो तो संबंध बहुत काल से, जैसे स्कूल में लड़के पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन कई साल की पढ़ाई का वो फल होता है। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़े नहीं और आकर के परीक्षा में बैठ जाए और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं, बहुत वर्षों की पढ़ाई का फल होता है, तो बहुत काल के अभ्यास का फल होता है। धीरे धीरे व्यक्ति में कृष्ण ज्ञान का उदय होता है, कृष्ण को समझता है। हाँ, अगर सोशलाइज न किया जाए उस संबंध को तो व्यक्ति पर उतना असर नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कोई कन्या किसी वर को वरण कर ली है, पति मान चुकी है मन ही मन, लेकिन जब तक उसका समाजीकरण नहीं होता है, लोगों के सामने अग्नि जला करके फिस्ट करके जैसे तैसे जब तक बताया नहीं जाता है तब तक वह बंधन वह शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती। उसी प्रकार से कृष्ण के साथ हम लोगों का संबंध है, लेकिन उस संबंध को एक दीक्षा उत्सव के द्वारा सोशलाइज किया जाता है तो उस भक्त पर असर होता है। अब मैं कृष्ण का हो गया, अब मैं भगवान का हो गया। हा पहले सही, लेकिन अब विवाह हो गया कृष्ण के साथ। यह नहीं समझना चाहिए कि गुरु के साथ विवाह हो गया। जीव कृष्ण का है। बहुत मैं वैष्णवों को यह बात बता रहा हूं जो उन्हें भ्रम होता है और बहुत बहुत गुरु 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 करते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। कृष्ण का भजन होना चाहिए। पहले की परंपरा है, सब कुछ देखा गया है। जगन्नाथ जी को समझना है। वैष्णव और गुरु उसमें एक मीडियम है, हेल्पर है, इसलिए वो भी पूज्य हैं, वो ही पूज्य हैं। लेकिन अपना जो वास्तविक मुख्य संबंध है कृष्ण के साथ वो समझना चाहिए। भागवत में खासकर चैतन्य चरितामृत में ये बात बहुत स्पष्ट की गई। गुरु की सहायता से, वैष्णव की सहायता से, वैष्णव को साधु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। भ्रमिते भ्रमिते जब साधु वैद्य पाए तो तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। उपदेश मंत्र होता है गुरु का। गुरु से तात्पर्य कोई भी वैष्णव उपदेश करता है, गीता का श्लोक भागवत का श्लोक बोलता है कहता है, तो उसके उपदेश से बात समझ में आ जाती है कृष्ण हमारे प्रभु हैं, त्राता हैं। तो ये जो माया है, अज्ञान है, ये पिशाची चली जाती है। उस जीव में भक्ति आती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि, तब वह कृष्ण के पास चला जाता है। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो हम सबको चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के विषय में सुने कहें। प्रायः भक्तों को देखा जाता है कि वे 24 घंटे में अगर एक टाइम कथा में बैठ जाए, सवेरे भागवत सुन ले, तो सोचते हैं कि अब 24 घंटे कोई जरूरत नहीं है सुनने। लेकिन कम से कम मैत्रेय जी कहते हैं दो टाइम, दो समय, प्रातः सायं। क्यों 24 घंटे की दूरी रखेंगे? उसको काटकर 12 घंटे की दूरी करनी चाहिए। बीच में 12 घंटा खंडित होना चाहिए, मतलब 12 घंटे सुने, सवेरे भागवत सुने, फिर शाम को सुने ये पढ़ें, और चकार से 24 घंटे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तब भगवान में प्रीति होती है। विशेष करके उन भक्तों को जिनकी आज दीक्षा हो रही है, उन्हें चाहिए कि वे अधिक से अधिक बहाना न करें कार्य का, व्यस्तता का। समय बीत रहा है बहुत तेजी से, जितना जल्दी से जल्दी भागवत को ग्रहण करना है, पढ़ना है, भक्तों की संगति में भक्ति है, जिससे शिष्य भक्ति में बढ़े उसका हित हो। लेकिन कभी कभी शिष्य गुरु के इस आदेश को समझ नहीं पाते हैं, तो अवज्ञा कर देते हैं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं। गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। और गुरु में भी कुछ मर्त धर्म रहेगा ही, मनुष्य है इसलिए मनुष्यत्व तो कुछ रहेगा। और टू योर इज मैन कहा जाता है ना, तो गुरु मनुष्य है, इस कारण से कुछ मनुष्य के धर्म उसमें होंगे। लेकिन वास्तव में यदि वह कृष्ण में आसक्त व्यक्ति है, शास्त्रों का ज्ञाता है, भगवान का भक्त है, तो उसके कमी के चलते उसमें अवज्ञा, उसमें मर्त बुद्धि इत्यादि नहीं करनी चाहिए। और चौथा अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुति शास्त्र निंदनम, ये वेद शास्त्र पुराण रामायण वगैरह यह कहना कि मनुष्यों ने रचा है, ब्राह्मणों ने रचा है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, या ऐसा किया है वैसा किया है, कहाँ भगवान है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, ये सब झूठा झमेला है। इस शास्त्र की इस तरह से कुछ लोग निंदा करते हैं, तो खास करके जो भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको तो इस अपराध से सख्त बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्र सब भगवान के उद्गार हैं और भगवान के भक्तों के, ऋषियों के, और लोक के हित के लिए लिखे गए, न कि किसी को तंग करने के लिए, समाज का हित करने के लिए शास्त्र लिखे गए, इसलिए कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और पांचवा नमा अपराध है हरि नाम निकल्पनम, यह विचार करना है कि कोई भगवान का नाम उम नहीं है, ये कुछ लोगों ने गढ़ लिया है नाम, अपने से रख दिया है। जैसे हम लोगों का, हम लोग जन्म लेते हैं तो कोई नाम नहीं रहता है, लेकिन बाद में लोग नाम रख देते हैं, तो यह कल्पना हुआ। नाम बदला भी जाता है, कुछ भी किया जाता है, पहले नाम कुछ रहता ही नहीं है, जन्म के समय कोई नाम नहीं रहता है, कोई मिश्रा तिवारी या पटनायक ये सब कुछ नाम नहीं रहता है। जन्म लेने के बाद तब धीरे धीरे वो भी कुछ दिन के बाद चालू होता है, पहले तो बच्चा लाला कहेंगे, तो धीरे धीरे तब मिस्टर मिनिस्टर चालू होता है कोई। नाम है नहीं हम लोगों का वास्तव, परंतु भगवान का नित्य सिद्ध नाम है, अनादिकाल से भगवान के नाम है। भगवान जैसा अवतार लेते हैं वैसे ही भगवान का नाम भी इस जगत में अवतार लेता है, जैसे कृष्ण यह नाम गर्गाचार्य के जिह्वा से अवतरित हुआ, हरि वासुदेव ये तीन नाम गर्गाचार्य ने रखा, गोविंद नाम यह इंद्र देवता के मुख से आया, तो भगवान का नाम पहले से है, अनादिकाल से है, वो प्रकट होता है। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसा समझते हैं कि नहीं 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 भगवान का कोई नाम नहीं है, केवल कल्पना करके रख दिया। गर्गाचार्य जब नाम रखते हैं तो कहते हैं, कैसे वो श्लोक में भूल, संति वर्णाश्रय यस्य गृहतन जुगम तनु, वे कहते हैं कि आपके पुत्र के अनंत नाम हैं और अनंत रूप हैं कहते हैं, और काल त्रयोपपन्नानि, तीनों काल में भगवान भी स्वयं कहते हैं पहले से नाम है, इस समय नाम है और वो अनंत काल तक रहेंगे। हम लोगों का तो नाम मिलता है बाद में और मरने के बाद वो नाम सब खत्म हो जाए, कृमि बीट भस्म संगीता हो जाए और धीरे धीरे लोग नाम बिल्कुल भूल जाते हैं। अब किसी से पूछिए कि तुम्हारे पितामह के पितामह का क्या नाम था, किसी को याद नहीं। आजकल के तो लड़कों को अपने पितामह का ही नाम याद करना कठिन है, पिता का नाम तो खैर लिखना पड़ता है इसलिए याद रखते हैं, दो चार वंश पीछे का कोई नाम याद नहीं, सब खत्म हुआ, बस रूप भी समाप्त हुआ और नाम। लेकिन भगवान के रूप नित्य हैं और नाम नित्य हैं, कल्पना नहीं। छठा नामा अपराध है यह सोचना कि भगवान नाम के कीर्तन और जप की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया है, नामाभास से पाप ध्वस्त हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा, ये शास्त्र कहता है नामाभास से पाप नष्ट हो जाएगा, जैसे अजामिल ने नारायण शब्द कहा लेकिन वास्तव में वह पुत्र के लिए कहा, तो इसको नामाभास कहते हैं। कुछ भी हो भगवान के नाम का ही तो प्रकाश हुआ ना, आभास। आभास के दो अर्थ हैं, आ का अर्थ है सम्यक और भास का अर्थ है प्रकाश, आभास। तो इस तरह से अथवा आभास का अर्थ होता है थोड़ा सा प्रकाशन, आ का अर्थ थोड़ा ईशत, जैसे सूरज उगता नहीं है, उगने के पहले ही प्रकाश छा जाता है आकाश में, सूरज उगता नहीं है उसके पहले ही, आपने देखा है ना रोज सूर्योदय के पहले ही प्रकाश छा जाता है, तो उस प्रकाश को देख करके कहा जाता है कि सूर्य आ चुका है कहीं, इसको आभास कहते हैं। तो वास्तव में सूर्य आकाश में नहीं है, और वास्तव में अजामिल भगवान का नाम नहीं बोला, लेकिन ये तो पता लग गया कि भगवान का नाम है नारायण, इसीलिए उसका पाप ध्वस्त हो गया पूरा समाप्त। क्या सूर्य के आभास मात्र से अंधकार का नाश नहीं हो जाता है? कोई आवश्यक नहीं होता है कि सूर्य आवे ही और दोपहर में ही हो, सूर्य अभी रहता है क्षितिज के नीचे तब तक अंधकार नष्ट हो। तो भगवान के नाम की है वास्तविक शक्ति है, वास्तविक शक्ति जितनी शक्ति है उतना तो मनुष्य कह ही नहीं सकता है, बढ़ाकर क्या कहेगा। हरि नामनी अर्थवाद, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। शास्त्रों में कर्मकांड, दान, वर्णाश्रम धर्म आदि की प्रशंसा की गई है, तो उनके फल को बढ़ा बढ़ाकर कहा गया है, जिसे लोग उस सत्कर्म में लगे। किसी को सत्कर्म में लगाने के लिए जो प्ररोचना दी जाती है, लोभ दिया जाता है, उसको अर्थवाद कहते हैं। उतना फल नहीं है लेकिन फल दिया जाता है, कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, पहले बच्चों का कर्ण छेदन होता था, कान छेदा जाता था, तो कान छेदा ले बच्चा, कान के उसके कान में छेद हो सके, इसके लिए कान छेदने वाला क्या करता था कि अपने पास मिठाई या गुड़ लेकर के जाता था बच्चों को, और गोद में बैठा करके गुड़ खिलाना चालू करता था। तो बच्चा गुड़ खाने में मस्त हो जाता था, तो उसी समय वो छेद देता था। हमारे यहां गांव में एक कहावत है कि जे गुड़ खाए वो कान छेदाई, जो गुड़ खाएगा वो कान छेदवाएगा। तो गुड़ खिलाना ये उद्देश्य नहीं होता था। तो पहले गांव में हल्ला होता था किसी बच्चे के लिए, करे वहां गुड़ मिल रहा है, गुड़ मिल रहा है, गुड़ मिल रहा है, गुड़ नहीं दिया जाता था। वास्तव में कान छेदने वाला आता था, छेद करके कुछ पैसा उसको मिलता था, लेकिन हल्ला होता था गांव में कि गुड़ गुड़ मिल रहा है फ्री में, गुड़ बेचने वाला आया है, देने वाला आया है, देने वाला है, तो बच्चे जा करके कान छेदवा लेते थे गुड़ खाने। तो शास्त्रों में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं शुभ कर्मों के विषय में, यज्ञ दान तप आदि के विषय में, उनके फल को इतना बढ़ा करके कहा गया है। तो बढ़ा करके जो कहा गया है फल, वो उतना सत्य नहीं है। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि उस शुभ कर्म में लोग लगे, इसीलिए फल बढ़ा करके कहा जाता है। जो कुछ लोगों का यह विचार है कि भगवान नाम जप कराने के लिए इसके फल को बढ़ा करके कह दिया गया, यह सोचना बहुत बड़ा अपराध है। शास्त्र कहता है कि जितना पाप काटने की शक्ति भगवान के नाम में है, उतना सारे विश्व के जीव मिलकर के पाप बना नहीं सकते, पाप नहीं कर सकते। भगवान के नाम की महिमा को भगवान भी नहीं जानते हैं, और कोई क्या बढ़ा करके कहेगा। शास्त्र उदाहरण देता है कि सूर्य में अंधकार नष्ट करने की जितनी शक्ति है, उतना विश्व के पूरे लोगों में अंधकार बनाने की शक्ति नहीं है। जैसे मान लीजिए सूर्य उगने वाला हो और अनाउंस किया जाए कि हे दुनिया के वैज्ञानिकों और हे इंजीनियरों, तुम सब मिलकर अंधकार को बचाओ, सूर्य उगने वाला है, सूर्य उगने वाला है, अंधकार को बचाओ, अंधकार को बचाओ, तो क्या कोई बचा पाएगा अंधकार को, तमोह को बचा पाएगा कोई? मान लीजिए अपने घर का किवाड़ बंद करे, अपने पॉकेट में अंधकार रखे, अपने झोला में रखे, अपने लोटा में रखे, कितना बचाएगा? कि सूर्य के उगते ही अंधकार नष्ट हो जाएगा। वैसे ही किसी के कान में या किसी के जिह्वा पर महामंत्र आता है, भगवान का नाम आता है, तो पाप रह ही नहीं सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान के नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता है, यथार्थ महिमा तो कोई कह ही नहीं सकता है, बढ़ाकर क्या कहेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि इसकी महिमा को बढ़ाकर कहा गया है, तो यह एक अपराध है। जो सातवां नमा अपराध है, यह सोचना कि मैं भगवान का नाम जप ही रहा हूं और थोड़ा गलती भी कर दूंगा, पाप भी कर दूंगा, तो नाम काट देगा, उसको खत्म कर देगा। तो इसका मतलब है कि नाम को हम पाप करने में सहायक बना रहे हैं कि हे नाम, हम पाप करने वाले हैं, आप काट दीजिएगा। तो इसका मतलब नाम को पाप काटने में नहीं, पाप कराने में सहायक बना रहे हैं। ये तो ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति टैबलेट लिया हो कलरा की और गड़बड़ खा करके कहे कोई बात नहीं, हमारे पास टैबलेट है और कलरा होगा भी तो देख लेंगे, तो टैबलेट के बल पर गड़बड़ काम कर रहा है। ये वैष्णवों में ऐसा विचार होता है भगवान का नाम है सब पाप काट देगा, इसलिए कभी कभी जानबूझ करके भी पाप कर देते हैं। तो यह नाम का बहुत बड़ा अपमान है, उसे पाप करने में सहायक बनाते हैं। नामनो बलात् जस सही पाप बुद्धि न विद्यते तस् जमय रहि शुद्धि। कभी नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। तो पाप हो गया है तो नाम तो काट ही देगा, लेकिन आगे जानबूझ करके पाप नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म है, जैसे दान देना, यज्ञ करना, तप करना और भी विविध प्रकार के तीर्थाटन आदि। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे और सब है वैसे ही एक नाम संकीर्तन भी है। नहीं, नाम संकीर्तन स्पेशल है, वो उन कर्मों में नहीं है, वो तो लौकिक भौतिक कर्म है, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण पूर्ण स्पिरिचुअल है। जैसे इसका उदाहरण दिया जाता है कि अब यहां दीपक जल रहा है, बिजली जल रही है, कुछ भी जल रहा है, रात में जलता है, तो कोई व्यक्ति कहे कि जैसे वो बल्ब जल रहा है, जैसे वो जल रहा है, वैसे ही एक दिन में सूर्य जलता है, कोई खास बात नहीं है, उन्हीं बल्बों में से वो एक सूरज भी है। तो यह तो मूर्खता हुई ना। और जो दीपक जलते हैं रात्रि में, वो तो है अपने स्थिति में, ठीक है घर का अंधकार दूर करेंगे, लेकिन यह कह देना कि सूरज भी एक इन्हीं दीपकों में से है, आदमी का बनाया, यह गलती। और किसी भी कर्म के साथ भगवान के नाम के उच्चारण की तुलना नहीं की जा सकती है। एक तरफ सारे साधन रखे जाए, सब कुछ सारे साधन, तो उनका प्रभाव एक सरसों के दाने के बराबर होगा, और जबकि उनकी तुलना में सारे साधन चढ़ाए जाए, सारे साधन एक तरफ तराजू के तुला के एक पल्ले पर एक तरफ, और एक तरफ भगवान के नाम का एक बार उच्चारण, तो वे सब मिलकर एक सरसों के दाने के बराबर होंगे और भगवान के नाम का उच्चारण सुमेरु पर्वत से भी भारी हो जाएगा। इसकी कोई तुलना ही नहीं है वास्तव में। इसीलिए तो शास्त्र कहता है, साधु जन कहते हैं, बताते हैं भगवान का नाम जप करो, नाम जप करो, नाम उच्चारण करो, कीर्तन करो, इसके समान कोई साधन नहीं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। शुभ सकाम कर्मों की तो बात छोड़ दीजिए, भक्ति में भी सबसे बढ़ करके भगवान के नाम का उच्चारण ही है, भक्ति में भी। तो इसलिए अन्य कर्मों के साथ इसका साम्य कभी नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। और जो लोग बिल्कुल बहिर्मुख हैं, भिन्न मत में हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम बिल्कुल नहीं करते, निंदा करते हैं, उन दूषित लोगों को भगवान नाम की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत निर्धन है, केवल साग भाजी बेचता है और सब करता है, और उसके पास कोई स्वर्ण या माणिक्य डायमंड हीरा लेकर के जाए और कहे कि ले लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत, वो कहेगा कि हम 2 रुपया देंगे इसका, क्या ला करके पत्थर दिखा रहे हो, इसको हम इसके लिए 1 रुपया देंगे। और मान लीजिए लाखों रुपए की चीज है, वो कहे अरे भाई ये लाख की चीज है, तुम 2 रुपया कहते हो, नहीं ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया दूंगा, तो वहां दिखाने की क्या जरूरत है, उसको तो ले जाकर के किसी जौहरी के दुकान में बेचना चाहिए ना, जो उसके महत्व को जानता है। और नहीं, कम से कम निंदा न करे भगवान नाम की या भगवान की, उसको देना चाहिए। तो भगवान नाम सुना सकते हैं किसी को भी, भगवान का नाम सुना सकते हैं लेकिन भगवान नाम की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। दो सहेगा नहीं, उल्टे कह देगा जाओ क्या बकवास कर रहे हो। तो कभी कभी तो बुलवाया जा सकता है, पापी से पापी व्यक्ति उसे भगवान का नाम बुलवाना चाहिए, सुनाना चाहिए, ये अपराध नहीं है, लेकिन महिमा सुनाना अपराध। एक बार हम लोग दशहरा के अवसर पर झारखंड में प्रीचिंग करते हुए घूम रहे थे तो एक व्यक्ति बकरा ले जा रहा था दशहरा के अवसर पर बेचने के लिए। कुछ लोग प्रसाद खाते हैं बकरा भद्रकाली को भोग लगा के तो, और ले जा रहा था और वो मुस्लिम था तो हमने भक्तों से कहा कि इससे भगवान का नाम बुलवाइए। हम लोग जानते थे कि ये जल्दी नहीं बोलेगा तो कहे बुलवाई बुलवाई बेचारे से भगवान का नाम बुलवाई। तो एक भक्त ने कहा कि आप बोलिए हरे कृष्ण, तो कहा कि मैं मुसलमान हूं। तो हम लोगों ने कहा कुछ, बच्चों ने कहा कि कुछ भी है फिर भी बोलिए, वो नहीं नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा। तो वो बच्चे हार गए तो आए कहे तो बोल नहीं रहा है बोल नहीं रहा है। तो मैं कहा कि जा करके पूछो, तो कह रहा है कि नहीं बोलूंगा, तो जा करके पूछो कि क्या नहीं बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो वो कहा कि हरे कृष्ण यही नहीं बोलूंगा। तो हाँ, हम लोगों ने कहा कि आप तो बोल दिए। वो लड़के सब हंसने लगे, कहे कि आप तो बोल दिए, तो वो अपनी भूल महसूस करने लगा कि अरे मैं बोल दिया। वही जो कहते हैं हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। तो बोल दिया इस तरह। वैसे तो बेचारा सुन रहा था, सुनने मात्र से पवित्र हो गया। सुनने में और बोलने में कोई भेद नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि जप करते समय चुपचाप सुनता रहे बोले ना। जप में बोलना जरूरी है, लेकिन कोई दूसरा वैष्णव गा रहा है तो उसे भी ध्यान से सुनना। मैं अपने बॉम्बे मंदिर में एक बार देखा था, एक बार खूब जोर जोर से भक्त लोग जप कर रहे थे मंगला आरती के बाद, तो एक भक्त चुपचाप बैठा था और देखा जा रहा था कि माला को खिसका रहा है, चुपचाप बैठा था। तो टेम्पल कमांडर घूम रहा था, घूमते हुए भ्रमण करते देखा हुए बिल्कुल नहीं बोल रहा है। तुम क्यों नहीं बोलते हो, तुम क्यों नहीं बोलते हो? तो वो कहता है तुम लोग बोलते हो उसको सुन रहा हूं। अब वो क्या करे टेम्पल कमांडर, तुम लोग जो बोल रहे हो उसको सुन रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सुन सुन करके जप कर रहा हूं। तो वह भी हम लोग वहीं थे और हमको तो बड़ा अच्छा लगा कि सही कहता है। लेकिन ठीक है सुनना चाहिए, लेकिन जप जब करना है तो ऐसा नहीं कि दूसरे का सुन सुन करके और खिसकाया कर चुपचाप रहा। अपना बोल बोल करके मन का खिसकाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और दसवां नाम अपराध है बारंबार शास्त्रों से और वैष्णवों से भगवान के नाम के उच्चारण की महिमा सुनकर भी भगवान के नाम उच्चारण में अनुराग न होना, और जैसे पहले थे वैसे ही विषय शक्ति बनाए रखना, यह अपराध है। और यह भी अपराध है कि भगवान का नाम जपते समय जानबूझ करके ध्यान न देना, अटेंशन पूरा न देना, भगवान में चित्त को एकाग्र न करना। तो कोई व्यक्ति बहुत काल से जप कर रहा है, मान लीजिए किसी को 15 वर्ष हो गया जप करते हुए, 20 वर्ष हो गया, 30 वर्ष भी हो गया, और देखा जा रहा है कि जहां जैसी चेतना पहले थी जैव की तें वैसी ही बनी हुई, तो इसको कहते हैं विषय शक्ति बनाए रखना। बल्कि कुछ लोगों का तो यह भी देखा जाता है कि जप करते हैं और पहले से ज्यादा विषय शक्ति बढ़ गई। ये क्या है? इसका मतलब कि कोई न कोई इन नौ अपराध में से कोई न कोई अपराध हो रहा है, इस कारण से होता है। तो ये क्या है? कोई जाए मक्का मदीना और हाजी बनकर के आए, हज करके आए, तो हमारे यहाँ कहते हैं मक्का गए मदीना गए बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं गई फिर पाजी के पाजी हाजी और पाजी दो होते हैं, पाजी माने शैतान बिल्कुल। तो हाजी बन करके आए तीर्थ करके और फिर पाजी ही रह गए, ये ठीक नहीं है ना। भगवान नाम जप करके शुद्ध होना चाहिए, अपराधों से बचने पर विकास होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 वर्ष जप किए तो इसके बाद अब चले संसार को भोगने के लिए, 20 वर्ष सन्यासी रह करके विवाह अब चालू करे, ये क्या है? क्या तुमने जप किया, क्या तुमने तप किया, क्या भजन किया? शुद्धि होनी चाहिए ना, तो अपराध से बचा जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बारम्बार इस बात को दोहराते रहते थे और दीक्षा के समय यह चेतावनी देना जरूरी है कि नाम अपराध से बचना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, तब डिजायर रिजल्ट कृष्ण प्रेम मिलता है ना उसे पढ़ते हैं ना, तब अपना अभीष्ट कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। अच्छा, कोई वैष्णव अपराध तो होता ही रहता है, नाम अपराध होता ही रहता है, इसीलिए सबसे उपाय ये है कि वैष्णवों के चरण धूलि में लोटा प्रणाम किया जाए, उनकी कृपा से नाम अपराध मिटता है। इसीलिए पढ़ा जाता है रोज, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावने वैष्णव। तो इस प्रकार नाम अपराध से बच करके हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। यह बहुत सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है। नामापराध इसलिए बताया जाता है कि हम लोग बचे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तब हम भक्त बनेंगे ही नहीं, इतना अपराध होगा ये होगा वो होगा कुछ लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल मूर्खता है। नामापराध से बचना चाहिए और जप करते रहना चाहिए। अच्छा, नामापराध मान लीजिए हो रहा है, तब उपाय क्या है? उपाय यह है कि और अधिक जप कीजिए, नामापराध को नाम संकीर्तन ही नष्ट करता है। अविश्रांत प्रयुक्तानि नामान्येव हरन्त्यघ, अविश्रांत जप करते रहेंगे वो जप ही नामापराध को खत्म करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय श्री जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय गौरमिताय, जय कृष्ण बलराम, हरे कृष्ण।